इशिका डीन स्मिथ से मिलने के लिए प्राइवेट रेस्टोरेंट में आई हुई थी, जहां उसे इत्तेफाक से मिस्टर केशव सिंघानिया मिले। केशव सिंघानिया को इशिका की शक्ल अपनी माँ से जानी पहचानी लगी, तो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ गए और इशिका से बात करने लगे। थोड़ी ही देर में इशिका और मिस्टर सिंघानिया का अच्छा बॉन्ड बन गया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के नंबर शेयर किए और अपनी अपनी माँ की तारीफें कर रहे थे। इस बीच अभिमन्यु वहां पहुंचा। अभिमन्यु इशिका को लेने के लिए वहां पर आया था। अंदर कदम रखते ही इशिका ने अभिमन्यु को देखा तो उसकी तरफ हवा में हाथ हिलाया। इशिका को देखते ही अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़र उसकी सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। अभिमन्यु उनकी तरफ बढ़ता तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, अभिमन्यु कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ अभी मेरे पास आ जाओ। ये प्रणाली का कॉल था। अभिमन्यु ने अपने चेहरे के भाव को सख्त किया और कहा, मैं इस टाइम नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा हूँ। क्या कहा? अपनी वाइफ के साथ हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने किसी और से शादी कर ली और अब उसके लिए मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो? हमारे बचपन का वादा तुम भूल गए हो, प्रणाली ने कहा। बोलते हुए वो रोने लगी थी। अचानक ही अभिमन्यु के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। उस वक्त वो लगभग 9 साल के करीब था जब नकुल ने उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों के हाथों बेच दिया था। वो उसे गांव में ले गए जहां वो एक घर में बंद थे। उन लोगों को एक बेसमेंट में बंद रखा जाता था। अभिमन्यु ने पहली बार वहीं पर उस लड़की को देखा था जहाँ वो भीड़ में खड़ी होकर उन सबको बोल रही थी, तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? वो हमें खाना देते हैं, हमें मारते भी नहीं हैं, ना ही गालियाँ देते हैं, रात को चॉकलेट भी खाने को देते हैं, फिर तुम लोग इतना शोर क्यों चाहते हो? इस समय अभिमन्यु ने उसे गौर से देखा था। वो लगभग 4 साल के आसपास थी, दुबली पतली दिखने वाली लड़की। अभिमन्यु ने महसूस किया कि वहां रहने वाले गुंडे उस लड़की पर काफी भरोसा करते थे और उसे अपने काम से बाहर तक जाने देते थे। वो वहां की सबसे शांत और आज्ञाकारी बच्ची थी। धीरे धीरे वहां के बच्चों को बाहर भेजा जाने लगा। जब कम बच्चे रह गए थे उनमें से अभिमन्यु और वो लड़की भी एक थी। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तब अभिमन्यु ने उसका नाम पूछा तो पता चला कि उसका कोई नाम नहीं है। उस वक्त अभिमन्यु को काफ़ी अफसोस हुआ था क्योंकि इस उम्र तक बच्चों के नाम रख लिए जाते थे। वो लड़की थोड़ी अलग थी, उसे ये गुंडे अपनी माँ से अच्छे लगते थे। जब अभिमन्यु को बचाने के लिए कोई नहीं आया तो उसने सोच लिया कि उसे खुद को ही यहाँ से बाहर निकालना होगा। अभिमन्यु ने उस लड़की की मदद लेनी चाही और उसे सब बताया। पूरा प्लान सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हो? ये हमें अच्छे से खाना तो देते हैं। मुझे अपनी दादी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। उसने कुछ पल अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उस लड़की ने अभिमन्यु की मदद की और उन लोगों के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दवा भी वो खुद अभिमन्यु के कहने पर बाहर से लेकर आई थी। वो गुंडे उस पर यकीन करते थे तो पास की दुकान से सामान लेने भेज देते थे। जब उनके बेहोश होने पर सब बाहर भाग रहे थे तब वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। अभिमन्यु उसके पास आया और बोला, तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, उस लड़की ने जवाब दिया। अभिमन्यु उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो जानता था कि होश में आने पर ये गुंडे उसे उन्हें बेहोश करने के लिए मार डालते। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे घर चलो। उसने हाँ में सिर हिलाया और अभिमन्यु के साथ आ गई थी। फिर वो जैसे तैसे करके पुलिस स्टेशन पहुंचे। कुछ दिनों तक वो वहां पर रहे और उनके घर वालों का पता लगाकर जब उन्हें भेजा जा रहा था तो अभिमन्यु को उससे अलग कर दिया गया था। हालांकि वो लड़की जाते हुए बहुत रो रही थी। वो गुस्से में अभिमन्यु से बोली, तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। अभिमन्यु ने पुलिस ऑफिसर को देखकर कहा, मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ और वो भी मेरे साथ आना चाहती है। पुलिस ऑफिसर मुस्कुराया और सिर हिलाया, तुम दोनों अभी छोटे हो, हर एक को अपने अपने घर वापस जाना चाहिए, तुम उसे नहीं ले जा सकते, उसने जवाब में कहा। वो लड़की और जोर से रोने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, उसकी आंखें मुश्किल से खुली थीं। वो रोते हुए बोल रही थी, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए क्या करना होगा? अभिमन्यु उसे रोते हुए देख रहा था। पिछले 3 महीने से वो दोनों साथ थे और इस वक्त में वो लड़की ही उसका सहारा बनी थी, वो सिर्फ उसी से बात करता था। अगर उस लड़की ने मदद नहीं की होती तो शायद अभिमन्यु और बाकी बच्चे कभी बाहर नहीं आ पाते और उनकी जिंदगी बदतर हो जाती। अभिमन्यु ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, कैसा रहे जब तुम 20 साल की हो जाओ तो मैं तुमसे शादी करने आऊं? जब मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मेरे साथ घर आ सकती हो? सच में? लड़की ने मायूसी से पूछा। हाँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, प्रॉमिस। उसके बाद जब अभिमन्यु वापस घर आया तो उसे अपने परिवार के बाकी लोगों से बचाने के लिए वसुधा ने उसे घर से दूर एब्रॉड भेज दिया था। धीरे धीरे समय बीत गया और बड़े होने पर अभिमन्यु ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। उसे आज भी वो वादा याद था और उसने उस लड़की को ढूंढने का सोचा, लेकिन बहुत समय बीत चुका था और उस समय के पुलिस स्टेशन में इंटरनेट नहीं था और एक आग लगने से सारे रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। अभिमन्यु के आदमियों ने कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की और आखिर में वो प्रणाली के घर पर पहुंचे और इस तरह अभिमन्यु के लिए प्रणाली ही वो लड़की थी जिसने उसे बचाया था। अभिमन्यु ने प्रणाली को लगभग 4 साल पहले ढूंढा था जब वो 19 साल की थी। अभिमन्यु को देखते ही वो उसकी कॉलर पकड़कर जोर से रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं वहीं पर पड़ी रहती तो वो लोग मुझे किसी अच्छी जगह भेज देते। तुम जानते भी हो कि मेरा बाप एक शराबी है और मेरी माँ न जाने क्या क्या करती है हमारा पेट पालने के लिए। प्रणाली को वो पूरी कहानी भी पता थी, इस वजह से अभिमन्यु ने उस पर यकीन कर लिया। वो भी बीमार रहती थी, प्रणाली सीरियस डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकार थी। प्रणाली को उस बुरी हालत से निकलने के लिए अभिमन्यु उसे अपने साथ लंदन ले गया और उसका इलाज शुरू हो गया था, लेकिन प्रणाली की हालत में सुधार नहीं आया था। धीरे धीरे प्रणाली के साथ रहते हुए उसने महसूस किया कि शायद शादी जैसी चीज बहुत बड़ी है और बचपन में उसे पता नहीं होने की वजह से उसने प्रॉमिस कर दिया था। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैं इसे शादी के लिए टालता रहा और मैं पहले से ही इशिका के साथ शादी में बन चुका था, वरना मैं ये वादा कभी नहीं निभा पाता। अगर गलती से मैं इससे शादी कर भी लेता तो हम दोनों ही खुश नहीं रहते। अभिमन्यु अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके कान में एक आदमी की आवाज पड़ी, प्लीज मिस्टर राजवंश, आप जल्दी हॉस्पिटल आइए, मिस प्रणाली को फिर से पैनिक अटैक आने लगे हैं, ये खुद को और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, हम ज्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। अभिमन्यु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने शांति से कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभिमन्यु के पास कोई रास्ता नहीं था, प्रणाली जैसी भी हो, लेकिन उसने उसे उस वक्त बचाया था और वो उसका ये एहसान नहीं भूल सकता था।
इशिका ने महसूस किया अभिमन्यु काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन अचानक ही वो चला गया। उसे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है, कल पक्का हम साथ में डिनर करेंगे, अभिमन्यु ने मैसेज में कहा। मैसेज देखने के बाद इशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव गए, फिर उसने केशव को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं, उन्हें अचानक से कोई काम आ गया तो जाना पड़ गया। ऐसे आदमियों की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पत्नी को कुछ और कहते हैं जबकि उनका बाहर चक्कर चल रहा होता है। क्या काम आया है उसे, उसने बताया तुम्हें, केशव ने हल्की सख्ती से कहा। वो इशिका की परवाह कर रहे थे क्योंकि उसकी शक्ल उनकी माँ से मिलती थी और दूसरा थोड़ी ही देर में उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। इशिका ने अभिमन्यु के पक्ष में कुछ नहीं कहा, वो हमेशा ऐसे ही अचानक इशिका को छोड़कर गायब हो जाता था। इशिका को दिल ही दिल में बुरा लग रहा था। इशिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर केशव ने भी इस मामले को ज्यादा नहीं खींचा और बातचीत के रुख को बदलते हुए कहा, अच्छा अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया है, क्या नाम है तुम्हारा? इशिका ने ऊपर देखा, वो अपना नाम बताने वाली ही थी कि तभी उसने कुछ पल रुककर कहा, वो एक्चुअली मैं स्ट्रेंजर्स के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होकर अपने दिल की बात कह पाती हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे का नाम और पहचान जान जाएंगे तो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। क्या हो जो हम दोनों एक दूसरे के नाम से अनजान रहें? केशव को उसका ये आइडिया अच्छा लगा। उसका भी यही हाल था कि वो अपने दोस्तों और बाकी लोगों के आगे इतना खुल नहीं पाता था। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। वो दोनों फिर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। डिनर हो जाने के बाद में केशव ने इशिका से कहा, 2 दिन बाद मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, वो डिनर मेरी तरफ से होगा, क्यों ना वहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ आओ, मैं भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है फिर 2 दिन बाद यहीं पर मिलते हैं, इशिका ने तुरंत हाँ कहते हुए कहा। वो जानती थी कि इस डिनर के लिए राधिका भी मान जाएगी। फिर उन्हें बाय बोलने के बाद इशिका वहाँ से चली गई थी। केशव उसे जाते हुए देख रहे थे। वो धीरे से बोले, आज अरमान को यहाँ पर होना चाहिए था, वो मुझे हंसते हुए देखता तो सरप्राइज रह जाता। केशव की पर्सनैलिटी काफ़ी सख्त थी तो वो कम ही हंसी मजाक किया करते थे, मुश्किल से ही किसी ने उन्हें हंसते हुए देखा होगा। इशिका के बारे में सोचते हुए फिर से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बाहर जाने लगे। बाहर आते ही उनकी नज़र अरमान पर पड़ी। उनके दिमाग में इशिका का चेहरा जैसे छप सा गया था क्योंकि वो उनकी माँ की तरह दिखती थी। अचानक केशव ने अरमान से पूछा, क्या तुम्हारे डैड या चाचा का कहीं अफेयर चल रहा है, उनकी कोई बेटी तो नहीं? अरमान उस वक्त कॉफ़ी पी रहा था। केशव के इस सवाल से उसके गले में कॉफ़ी अटक गई थी और वो खांसते हुए बोला, चाचू ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी दादी की तरह दिखती थी, केशव ने बताया। अरमान ने उन्हें देखकर मुंह बिगाड़ा और कहा, दुनिया में बहुत से लोग एक जैसे लगते हैं और आप मेरे पापा और चाचू पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अपने बारे में भी सोचिए, कहीं आपका तो कोई बच्चा नहीं है? केशव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जहां तक उन्हें याद था, उनके किसी के साथ इस तरह के संबंध नहीं रहे थे कि उनके बच्चा हो। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ इशिका राजवंश हाउस जाने के बजाय सिंघानिया मेंशन गई। उसने पूरे दिन से राधिका को नहीं देखा था और उसे उनकी याद आ रही थी। इशिका सिंघानिया मेंशन के आगे खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो घर उसके लिए नरक की तरह था, जहां से वो हमेशा भागना चाहती थी। लेकिन आज उस घर को देखकर इशिका को कुछ और ही महसूस हो रहा था। आज वो घर उसे खुद का लग रहा था। इशिका ने दरवाजा खोला तो राधिका सामने लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। वो अंदर आ रही थी। उसने देखा बाहर हाउस हेल्पर कुछ बड़े बॉक्स में सामान पैक कर रहे थे। एक हाउस हेल्पर ने इशिका की तरफ देखकर सर झुकाकर कहा, आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। उनके सामने भी सच्चाई खुल गई थी। आज से पहले इशिका जब भी वहां पर आई तो उसे वहां के हाउस हेल्पर तक निकाल देते थे, लेकिन आज वो उसके आने पर खुश हो रहे थे। इशिका ने बिना कुछ कहे उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और वो राधिका के पास जाने लगी। वहीं राधिका ने उसे देखा तो मुस्कुराकर कहा, इशिका आओ बेटा मेरे पास। वो अपने आईपैड में कुछ कर रही थी। इशिका के पास बैठते ही उन्होंने स्क्रीन इशिका की तरफ करते हुए कहा, ऊपर आयशा के कमरे से मैंने सारा सामान हटवा दिया है और मैं इसे तुम्हारे हिसाब से रीडिजाइन करवा रही हूँ। वो कमरा इस घर का सबसे अच्छा कमरा है और वो मेरी बेटी का होना चाहिए, ताकि आगे से तुम अभिमन्यु के साथ आओ तो दोनों वहां आराम से रह सको। ये बहुत अच्छा है, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी आंखें नम हो रही थी। उसे लगा नहीं था कि आयशा का सामान इतनी जल्दी वहां से हटा दिया जाएगा। इशिका राधिका के पास खिसकी और उसके कंधे पर सर रखकर कहा, आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो और तुम पागल लड़की, ये सब तुम्हारा ही है, इसलिए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ तुमने कुछ खाया? राधिका ने प्यार से उसे सहलाते हुए पूछा। हाँ, आपको पता है आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंकल से हुई थी और दो दिन बाद मैं वापस उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपको अपने साथ लेकर आऊंगी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। जरूर, राधिका ने जवाब दिया। राधिका ने बिना जाने मिलने के लिए हाँ कह गया था, इस बात से अनजान कि वो इशिका के साथ किसी और से मिलने नहीं बल्कि उसी के बाप से मिलने जा रही है।